प्रिय श्रोताओं नमस्कार। बाइबल अध्ययन कार्यक्रम सत्य वचन में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करते हैं। हमेशा की तरह आपका अपना प्रिय बाइबल अध्ययन लेकर एक बार फिर हम आपकी सेवा में उपस्थित हैं और उम्मीद करते हैं कि आप सभी आज का बाइबल अध्ययन करने के लिए तैयार हैं। इन दिनों हम पवित्र शास्त्र बाइबल के नए नियम में से पत्रस की पहली पत्री का विस्तार से अध्ययन कर रहे हैं, जिसका मुख्य विषय है दुखों के मध्य आशा। श्रोताओ, हमें उम्मीद है कि इस बाइबल अध्ययन से आपको लाभ मिल रहा है। तो चलिए आज के इस बाइबल अध्ययन में हम सम्मिलित होते हैं, किंतु इससे पहले मन की तैयारी के लिए सुनते हैं एक मधुर गीत।
जब से मसीहा मेरे दिल में है आया, जब से मसीहा मेरे दिल में है आया, नया हौसला मैंने जीने का पाया, जीवन सजाया सजाया। जब से मसीहा मेरे दिल में है आया, जब से मसीहा मेरे दिल में है आया, नया हौसला मैंने जीने का पाया, जीवन सजाया सजाया। जब से मसीहा मेरे दिल में है आया, जब से मसीहा मेरे दिल में है आया, मेरी जिंदगी में थे नफरतों के साए, मेरी जिंदगी में थे नफरतों के साए, अपने हुए थे पराए, प्यार किसी ने दिखाया दिखाया। जब से मसीहा मेरे दिल में है आया, जब से मसीहा मेरे दिल में है आया।
प्रिय मित्र, प्रभु यीशु के पवित्र और मधुर नाम में आप सबको मेरा नमस्कार। मैं कुशल पूर्वक हूँ और मुझे आशा है कि आप सब भी परमेश्वर की दया से कुशल पूर्वक हैं और हमेशा की तरह आज फिर से परमेश्वर के वचन में से सुनने और सीखने के लिए तैयार बैठे हैं। मैं आप सभी श्रोता मित्रों का इस कार्यक्रम में स्वागत करता हूं और अपने उन सभी नए मित्रों का भी जो आज पहली बार हमारे इस कार्यक्रम को सुन रहे हैं। मैं आशा करता हूं कि आज के इस कार्यक्रम के द्वारा आप में से प्रत्येक अपने जीवन में आत्मिक लाभ प्राप्त करेंगे। जैसा कि आप सब जानते हैं कि हम इन दिनों बाइबल में से पहला पत्रस की पत्री का अध्ययन कर रहे हैं। मेरे प्रियो, पिछले बार हमने देखा कि हमारे प्रभु यीशु मसीह के परमेश्वर और पिता का धन्यवाद हो, जिसने यीशु मसीह के मरे हुओं में से जी उठने के द्वारा अपनी बड़ी दया से हमें जीवित आशा के लिए नया जन्म दिया, अर्थात एक अविनाशी और निर्मल और अजर मीरास के लिए जो तुम्हारे लिए स्वर्ग में रखी है, जिसकी रक्षा परमेश्वर की सामर्थ से विश्वास के द्वारा उस उद्धार के लिए जो आने वाले समय में प्रकट होने वाली है की जाती है। इस कारण तुम मगन होते हो, यद्यपि अवश्य है कि अभी कुछ दिन के लिए नाना प्रकार की परीक्षाओं के कारण दुख में हो। हमने इन बातों को देखा था। आज हम अपने अध्ययन में आगे बढ़ेंगे, लेकिन इससे पहले आइए हम सब प्रार्थना करें और परमेश्वर से आज के अध्ययन के लिए सहायता मांगे। प्रेमी और दयालु पिता परमेश्वर, हम आपको हृदय से धन्यवाद देते हैं पिताजी इस सुंदर समय के लिए जिसे आपने हम सबके जीवन में दिया है, ताकि हम आपके जीवित और सामर्थ्य वचन का अध्ययन कर सकें। इस समय जब हम आपके वचन में से सीखना चाहते हैं, मनन चिंतन करना चाहते हैं, पिता परमेश्वर हमारी प्रार्थना है कि आप हमारे प्रत्येक श्रोता भाई बहनों को जो इस समय दूर दराज में बैठे आपके वचन को सुन रहे हैं, आप उनके हृदयों को तैयार करें, उन्हें अपनी बुद्धि ज्ञान और समझ दे, ताकि आज का वचन प्रत्येक के जीवन में कार्य करने पाए। हमारी प्रार्थना उन भाई बहनों के लिए है जो इस समय बीमार हैं, निराश हैं, परेशानियों में हैं, तनाव में हैं, अपने जीवन को समाप्त करना चाहते हैं, पति पत्नी को छोड़ना चाहते हैं। पिताजी, हमारी विनती है कि आप इन्हें आशीष दें, उनकी रक्षा करें, उन्हें शांति दे, उन्हें छुटकारा दे, आनंद दे, ताकि प्रत्येक जीवन आपको धन्य कहने पाए। आज अपने वचन के द्वारा हम सब से बोले और बातचीत करें। धन्यवाद के साथ प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। मेरे मित्रों, आइए अब हम आगे बढ़ते हैं और पहला पत्रस की पत्री 1:7 को पढ़ते हैं। पहला पत्रस की पत्री 1:7 में लिखा है, और यह इसलिए है कि तुम्हारा परखा हुआ विश्वास, जो आग से ताए हुए नाशवान सोने से भी कहीं अधिक बहुमूल्य है, यीशु मसीह के प्रकट होने पर प्रशंसा और महिमा और आदर का कारण ठहरे। पत्रस यहाँ एक अति उत्तम उदाहरण देता है और एक महान शब्द का प्रयोग करता है, बहुमूल्य। मेरी एक जानकार महिला इस बहुमूल्य शब्द का बहुत उपयोग करती है, उसके लिए सब कुछ बहुमूल्य है। वह कहती है कि मैं बहुमूल्य हूँ, हमारा रेडियो कार्यक्रम बहुमूल्य है, मैंने कभी कुछ कहा तो वह भी उसके लिए बहुमूल्य है। वह अपनी सहेलियों से भेंट करने के लिए जाती है तो वह समय भी उसके लिए बहुमूल्य है। अपनी सहेलियों के साथ वह भोजन करती है तो वह भी उसके लिए बहुमूल्य होता है। अतः बहुमूल्य शब्द स्त्रियों का शब्द है, परंतु यहाँ एक कठोर मछुआरा पत्रस इसका उपयोग कर रहा है। वह कहता है कि हमारे विश्वास का परखा जाना बहुमूल्य है। वह 7 बहुमूल्य शब्द का उपयोग करता है। लिखा है, तुम्हारा परखा हुआ विश्वास, जो आग से ताए हुए सोने से भी कहीं अधिक बहुमूल्य है। सोने को आग में डालने का अर्थ यह नहीं कि उसे नष्ट किया जा रहा है, परंतु यह कि उसे परिशुद्ध किया जा रहा है। आगे चलकर पत्रस हमारे प्रभु यीशु के लिए भी इस उपमा का उपयोग करेगा। हम सोने चांदी से नहीं, हमारे प्रभु यीशु के बहुमूल्य लहू के द्वारा मुक्ति पाए हुए हैं। परमेश्वर भी हमें परखने के लिए आग में डालता है। वह हमें नष्ट नहीं करना चाहता है, वह हमें परिशुद्ध सोना बनाना चाहता है। मेरे मित्रों, मसीही चरित्र का निर्माण इसी से होता है। आग में तपने से सोना का मैल दूर होता है और बहुमूल्य सोना उभर कर आता है। यह परमेश्वर की विधि है, यह परमेश्वर की पाठशाला है। हमें भी निखारने के लिए परमेश्वर ऐसा ही कुछ करता है। आज इस शिक्षा का प्रचार नहीं किया जाता है, इसकी अपेक्षा हमें आत्मनिर्भर होने की शिक्षा दी जाती है। हम सिद्ध नहीं हैं, हम आत्मनिर्भर नहीं हैं, हम परमेश्वर के समक्ष पापी हैं, और जब हम उसके पास आते हैं तब वह हमें प्रभु यीशु के लहू के द्वारा अपने अनुग्रह से बचा लेता है। वह हमें परीक्षाओं के द्वारा सिखाता है, वह परीक्षाओं के द्वारा हमें अपने निकट लाता है। मेरे प्रियो, सिद्धता पाने के लिए छोटा रास्ता नहीं है, सब युक्तियां बंद गली हैं। हमें सिद्धता प्राप्त करने वाली परमेश्वर द्वारा भेजी गई परीक्षाएं हैं, ताकि हम उसमें बढ़ते चले जाएं, मजबूत होते जाएं। आगे लिखा है, यीशु मसीह के प्रकट होने पर। मेरे विचार में प्रभु यीशु के प्रकट होने पर हम परीक्षाओं के लिए परमेश्वर को धन्यवाद कहेंगे। अति संभव है कि हम उस समय सोचें, काश हम पर और अधिक परीक्षाएं आई होती। उसकी उपस्थिति में हम परीक्षाओं के महत्व को समझेंगे। पत्रस की परीक्षाओं पर ध्यान दें। इस पत्र को लिखते समय उसके सामने क्रूस की मृत्यु खड़ी थी। वह कहता है कि परीक्षाएं प्रभु यीशु की उपस्थिति में हमें सोने के समान शुद्ध कर देंगी। हमें इसी की बाट जोहना है। अब पत्रस अति मूल्यवान बात कहेगा। आइए हम पढ़ते हैं पहला पत्रस की पत्री एक अध्याय उसके आठ पद। पहला पत्रस एक अध्याय उसके आठ पद में लिखा है, उससे तुम बिन देखे प्रेम रखते हो और अब तो उस पर बिन देखे भी विश्वास करके ऐसे आनंदित और मगन होते हो जो वर्णन से बाहर और महिमा से भरा हुआ है। मेरे प्रियो, हमारे लिए इस पद का महत्व महान हो। स्मरण रखें कि पत्रस प्रभु यीशु के साथ 3 वर्ष दिन रात रहा था। उस समय तो वह गलतियों का पुतला था, परंतु एक दिन सुबह गलील सागर के तट पर प्रभु यीशु ने उसे पाया। रात भर मछली पकड़ने वाले इन मछुआरों के लिए नाश्ता तैयार किया गया। मेरे विचार में वह पत्रस ही की प्रतीक्षा कर रहा था और मुझे तो उससे यह आशा थी कि वह पत्रस से कहे, पत्रस मैं तुझ पर विश्वास नहीं कर सकता, तूने मेरा इनकार क्यों किया, मैं तुझे काम में नहीं ले सकता, तू विश्वास योग्य व्यक्ति नहीं है। परंतु प्रभु यीशु ने ऐसा कुछ भी नहीं कहा। इसकी अपेक्षा उसने पूछा, क्या तू मुझसे प्रेम करता है? उसका प्रश्न यही है, क्या तू मुझसे प्रेम करता है? वह उतावला पुरुष अब शांत स्वभाव का था। उसने कहा, प्रभु तू तो सब कुछ जानता है, मैं तुझसे प्रेम करता हूं। तब प्रभु यीशु ने उससे कहा, मेरी भेड़ों को चरा। पत्रस ही ने पेंतिकोस्त के दिन पहला प्रचार किया था। अब पत्रस हमसे भी कहता है, उससे तुम बिन देखे प्रेम रखते हो। पवित्र आत्मा ही उसे हम पर सत्य सिद्ध कर सकता है। यही मसीही जीवन का भेद है। मेरे प्रियो, हम उससे प्रेम करें तो सब कुछ क्रमवार व्यवस्थित हो जाता है। यदि आप उससे प्रेम न रखें तो संसार का कोई सा भी अभ्यास आपकी सहायता नहीं कर पाएगा और न ही वह आपको अपनी भेड़ें चराने को भेजेगा। यहां पर लिखा है, अब तो उस पर बिन देखे भी विश्वास करके ऐसे आनंदित और मगन होते हो जो वर्णन से बाहर और महिमा से भरा हुआ है। क्या इसे सुनकर आपके दिल की धड़कन बढ़ गई है? क्या आप उसे सच में प्रेम रखते हो या आपका धर्म अर्थहीन है? ओह मेरे मित्रों, प्रभु यीशु महान है। पत्रस उससे प्रेम करता था, पौलुस उससे प्रेम करता था, सब सच्चे भक्त उससे प्रेम करते थे और करते हैं। मैं आशा करता हूं कि आप भी उससे प्रेम करते हैं। यदि आप उससे प्रेम करते हैं तो आपकी अनेक समस्याएं दूर हो जाएंगी, पति पत्नी के संबंध में सुधार आएंगे। यह एक उत्तम बात है कि प्रभु यीशु के प्रेम के कारण हमारे मन पर एक दूसरे के मेल होते हैं, हमारे मन एक दूसरे से मिलते हैं। मेरे प्रियो, आपकी कलीसिया में ही नहीं, आपके परिवार में भी यह प्रेम सहायक सिद्ध होगा। प्रभु यीशु से प्रेम रखने के कारण विश्वासी परस्पर मेल रखते हैं। यदि आप उससे प्रेम रखते हैं तो आपके सब संबंधों में आपको सहायता मिलेगी। आगे हम पढ़ते हैं, ऐसे आनंदित और मगन होते हो जो वर्णन से बाहर और महिमा से भरा हुआ है। प्रभु यीशु से प्रेम करना आनंददायक है। क्या आप आनंदित विश्वासी हैं? आपको होना भी चाहिए। आप एक राजा की संतान हैं और आपको एक दिन मीरास मिलने वाली है। उसकी संतान होना कैसा महान है। पहला पत्रस की पत्री एक अध्याय के 9 पद में हम आगे पढ़ते हैं, और अपने विश्वास का प्रतिफल अर्थात आत्माओं का उद्धार प्राप्त करते हो। उद्धार पुराने नियम में भविष्यवाणी का विषय था। भविष्यवक्ता और प्रेरित दोनों ही ने इसके बारे में सत्यता की गवाही दी है। यह विश्वास के कारण उत्पीड़ित तीतर बीतर यहूदी विश्वासियों के लिए कैसे आनंद की बात थी। कष्ट वहन और धर्मशास्त्र, हम इसे आगे पढ़ते हैं। पहला पत्रस एक अध्याय के 10 पद में लिखा है, इसी उद्धार के विषय में उन भविष्यद्वक्ताओं ने बहुत खोजबीन और जांच पड़ताल की, जिन्होंने उस अनुग्रह के विषय में जो तुम पर होने को था भविष्यवाणी की थी। इसकी भविष्यवाणी सब भविष्यद्वक्ताओं ने की थी। पहला पत्रस एक अध्याय के 11 पद में आगे लिखा है, उन्होंने इस बात की खोज की कि मसीह का आत्मा जो उनमें था और पहले ही से मसीह के दुखों की और उसके बाद होने वाली महिमा की गवाही देता था, वह कौन से और कैसे समय की ओर संकेत करता था। भविष्यद्वक्ताओं ने प्रभु यीशु के कष्टों और परमेश्वर के अनुग्रह की चर्चा की थी। यशाया की पुस्तक अध्याय 53, भजन संहिता 22 तथा अन्य अनेक धर्मशास्त्र के अंश इसकी चर्चा करते हैं। यहां पर हम देखते हैं लिखा है, उसके बाद होने वाली महिमा। यशाया की पुस्तक अध्याय 11 और भजन 45 में इसका उल्लेख है। भविष्यद्वक्ताओं ने प्रभु यीशु के कष्टों और इस पृथ्वी पर उसके राज्य की महिमा एवं प्रभुत्व की चर्चा की है। तब हम आगे देखते हैं, मसीह का आत्मा जो उनमें था। इससे स्पष्ट होता है कि भविष्यद्वक्ता परमेश्वर के आत्मा की प्रेरणा से भविष्यवाणी करते थे। परमेश्वर के वचन में अनेक संदर्भ हैं जो आत्मा की प्रेरणा का उल्लेख करते हैं। यह पद उनमें से एक है। उन्होंने परमेश्वर के आत्मा की प्रेरणा से लिखा है। मेरे प्रियो, उन्होंने जो लिखा उसे वे स्वयं नहीं समझ पाए थे। उन्होंने परिश्रम से अर्थ जानने का प्रयास किया। लिखा है, उन्होंने इस बात की खोज की कि मसीह का आत्मा जो उनमें था और पहले ही से मसीह के दुखों की और उसके बाद होने वाली महिमा की गवाही देता था, वह कौन से और कैसे समय की ओर संकेत करता था। पुराने नियम में प्रभु यीशु के कष्टों के अनेक संदर्भ हैं। अनेक पद मसीह यीशु की प्रभुता और उसके राज्य की चर्चा भी करते हैं। अनुग्रह और महिमा एक साथ हैं। उनके लिए यह समझना कठिन था। यशाया ने अध्याय 53 में प्रभु यीशु के कष्टों के बारे में लिखा था। अध्याय 11 में उसने प्रभु यीशु के राज्य की चर्चा की थी कि वह पृथ्वी पर अपना राज्य स्थापित करने के लिए सामर्थ और महिमा में आएगा। यह विरोधाभास भविष्यद्वक्ताओं के लिए उलझन का कारण था। अतः वे यही प्रयास करते थे कि इन दोनों बातों के सच होने की खोज करें। उन्होंने भविष्य में यह दो पर्वत चोटियां देखी थी, परंतु उनके मध्य समय की खाई को वे देख ना पाए। मेरे प्रियो, आज हम इस खाई में उपस्थित हैं। प्रभु यीशु के कष्टों का बीता हुआ समय और उसकी महिमा का भविष्य। इससे हमें सहायता मिलेगी कि हम प्रभु यीशु के कष्टों को एक पर्वत चोटी और उसकी भावी महिमा को दूसरी पर्वत चोटी स्वरूप देखें। यदि हमारे सामने दो पर्वत चोटियां हो तो देखने में वे आपस में जुड़ी दिखाई देती हैं, परंतु सच तो यह है कि उनके मध्य की दूरी कई मील की होती है। उन्हें दूर से देखने पर वे जुड़ी हुई दिखाई देती हैं। इसी प्रकार भविष्यद्वक्ताओं ने जब दूर भविष्य में देखा तो उन्हें प्रभु यीशु के कष्ट और उसकी महिमा एक साथ दिखाई दिए। मेरे विचार में उस युग के विचारक कहते होंगे, धर्मशास्त्र अपना ही विरोध करता है, दो विपरीत बातें एक साथ नहीं हो सकती। प्रभु यीशु या तो कष्ट उठाएगा या वह राज करेगा। परंतु अब हम जानते हैं कि दोनों बातें सच हैं। इन दोनों के मध्य की खाई कलीसिया का युग है, जिसे अब तक 2012 वर्ष हो गए हैं। पहला पत्रस की पत्री एक अध्याय के 12 पद में आगे हम पढ़ते हैं, लिखा हुआ है, उन पर यह प्रकट किया गया कि वे अपनी नहीं वरन तुम्हारी सेवा के लिए ये बातें कहा करते थे, जिनका समाचार अब तुम्हें उनके द्वारा मिला, जिन्होंने पवित्र आत्मा के द्वारा जो स्वर्ग से भेजा गया तुम्हें सुसमाचार सुनाया, और इन बातों को स्वर्गदूत भी ध्यान से देखने की लालसा रखते हैं। मेरे प्रियो, यहां पर हम देखते हैं कि प्रेरित कहते थे, हम वही बात सुनाते हैं जो भविष्य वक्ताओं ने कही थी। अंतर केवल यह है कि भविष्य वक्ता प्रभु यीशु के कष्टों और उसकी महिमा में अंतर नहीं दर्शा पाए थे, परंतु प्रेरित उस अंतर को समझने में अब सक्षम थे। लिखा है, इन बातों को स्वर्गदूत भी ध्यान से देखने की लालसा रखते हैं। मेरे विचार में स्वर्गदूत भी स्वर्ग से देखकर अचंभा करते हैं कि हम इस महान संदेश को क्यों नहीं सुनाते। उनकी अपनी मनोकामना है कि वे संसार में आकर इस संदेश को सुनाएं। आपको स्मरण होगा कि जिब्राइल ने मरियम और फिर यूसुफ को संदेश सुनाया था कि प्रभु यीशु का जन्म होगा। जी हाँ, उसने जकरिया से भी कहा था कि उसको पुत्र प्राप्ति होगी जिसका नाम योहन्ना रखा जाए, वह प्रभु यीशु का अग्रदूत होगा। मेरे विचार में जिब्राइल सोचता होगा कि वह आकर मुझसे कहे कि मैं अधिक परिश्रम नहीं कर रहा हूं, क्योंकि यह मेरी कल्पना से अधिक महान कार्य है। परंतु परमेश्वर उसे रोकता है और कहता है कि वह मुझ जैसे अकिंचन मानव को ही काम में लेगा। आज परमेश्वर मनुष्य को ही साधन बनाना चाहता है, साधन बनाता है। यह युग स्वर्गदूतों की सेवा का समय नहीं है, यह पवित्र आत्मा के कार्य का युग है। रोमियों की पत्री 8 अध्याय उसके 9 पद में पौलुस कहता है, परंतु जबकि परमेश्वर का आत्मा तुम में बसता है तो तुम शारीरिक दशा में नहीं परंतु आत्मिक दशा में हो। यदि किसी में मसीह का आत्मा नहीं तो वह उसका जन नहीं। जी हाँ, यदि आप प्रभु यीशु के हैं तो उसका आत्मा आप में अंतर्वास करता है। ऐसी दशा में आप क्या सोचते हैं कि स्वर्गदूत आप में पवित्र आत्मा से बढ़कर काम कर सकता है? आज का हमारा युग पवित्र आत्मा का युग है, अनुग्रह का युग है, जिसमें परमेश्वर का आत्मा मसीह की बातों को लेकर हम पर प्रकट करता है। अब इस प्रकाश में हमें क्या करना चाहिए? मेरे मित्रों, यहां पर पौलुस भी कहता है, तुम शारीरिक दशा में नहीं परंतु आत्मिक दशा में हो। यदि किसी में मसीह का आत्मा नहीं तो वह उसका जन नहीं। जी हां, यदि आप प्रभु यीशु के हैं तो उसका आत्मा आप में अंतर्वास करता है और आप उसकी आत्मा के चलाए चलते हैं। प्रश्न यह है कि क्या आज आप परमेश्वर के आत्मा के चलाए चल रहे हैं या अपनी ही चाल चल रहे हैं? मेरे प्रियो, इस वचन के प्रकाशन में मुझे और आपको जांचने की आवश्यकता है। यदि आज हम में परमेश्वर की आत्मा नहीं है तो निश्चय ही हम शैतान की ओर, उसकी बातों की ओर बढ़ रहे हैं, और निश्चय ही है कि हम अपने जीवन में विनाश को ला रहे हैं। यही कारण है कि आज हम जब संसार की ओर अपने दृष्टि को उठाते हैं तो हम देखते हैं कि बहुत सारे हमारे जवान भाई बहन, बहुत सारे परिवार नाश हो रहे हैं। उनके जीवन में प्रेम नहीं है, उनके जीवन में आनंद नहीं है। कारण यही है कि वे परमेश्वर की आत्मा के चलाए नहीं चलते हैं। मेरे मित्रों, आपको कुछ भी नहीं करना है, सिर्फ आपको एक काम करना है कि प्रभु यीशु के पास आप आएं और अपनी सारी बातों को, अपने जीवन के उन पापों को उसके सामने में उंडेल दें और उसके सामने अपने पापों को मान लें, क्योंकि वही आपके पापों को क्षमा कर सकता है, वही आपके पापों से आपको मुक्ति दे सकता है। उसका पवित्र लहू आपके पापों को धो देता है। जब तक आप उसके पास नहीं आते हैं और आप स्वीकार नहीं करते हैं, उससे नहीं मान लेते हैं, तब तक आपके पाप क्षमा नहीं होते। परमेश्वर जानता है कि आपके जीवन में पाप है, आपके जीवन में अशांति है, परंतु वह चाहता है कि आप अपने मुखों से उसे अंगीकार करें ताकि वह आपके लिए कार्य करने पाए। मेरे प्रियो, यदि आप सचमुच में उससे प्रेम रखते हैं, उसका बेटा और बेटी बनना चाहते हैं, आनंद और शांति अपने जीवन में देखना चाहते हैं, तो आज इस समय प्रभु यीशु के पास आ जाएं, क्योंकि वह कहता है, हे सब परिश्रम करने वाले और बोझ से दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। मेरे प्रियो, वह आपके पापों को क्षमा करेगा और पवित्र आत्मा की सहायता के द्वारा आपके जीवन में आनंद और खुशी भर देगा। क्या आज आप इसके लिए तैयार हैं? यदि हाँ, तो आज अपने जीवन को प्रभु के सामने लाएं, अपने हृदय को खोल दें और उससे कहें, प्रभु आज मैं चाहती हूँ कि आप मेरे जीवन में आए। मेरे पापों के लिए मैं पश्चाताप करती हूँ, आप मेरी सहायता करें, मेरे हर एक पापों को क्षमा कर दें, मुझे नया जीवन दें। पवित्र आत्मा आप मेरी सहायता करें। धन्यवाद प्रभु, क्योंकि आपने मेरी प्रार्थनाओं को सुना है, मेरे पापों को क्षमा किया है, मैं धन्यवाद देता हूँ। मेरे प्रियो, प्रभु ने आपके जीवन में कार्य किया है, आज से आप नए रीति से अपने जीवन में आगे बढ़ें और निश्चय जाने कि प्रभु आपकी सहायता करेंगे। मेरे प्रियो, यहाँ पर आज हमारे अध्ययन का समय भी समाप्त होता है और मुझे आशा है कि आप में से बहुतों ने आज के दिन परमेश्वर के वचन को अपने जीवन में स्वीकार किया है। प्रभु इन वचनों के द्वारा आप सबको आशीष दे और आप सबकी सहायता करें।
प्रिय श्रोता, अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम सत्य वचन। हमें विश्वास है कि आज का ये अध्ययन आपके आध्यात्मिक जीवन के लिए फायदेमंद सिद्ध हुआ है। हम आपसे जानना चाहेंगे कि इस अध्ययन से आपको और क्या क्या आशीष मिली हैं। हम आपकी जानकारी के लिए बता दें कि आपको देने के लिए हमारे पास नया नियम एवं पूरी बाइबल उपलब्ध है। यदि आप इसे प्राप्त करना चाहते हैं तो हमें इस पते पर लिखें, कार्यक्रम सत्यवचन, TWR इंडिया, पोस्ट बॉक्स नंबर 317, लखनऊ 226001, उत्तर प्रदेश। पता एक बार फिर से सुन लीजिए, कार्यक्रम सत्यवचन, TWR इंडिया, पोस्ट बॉक्स नंबर 317, लखनऊ 226001, उत्तर प्रदेश। आप इस नंबर पर हमें SMS या टेलीफोन भी कर सकते हैं। हमारा मोबाइल नंबर है 9198210018। एक बार फिर से सुन लीजिए, हमारा मोबाइल नंबर है 9198210018। इसके अलावा आप हमें ईमेल भी भेज सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है hindittb@twr.in, hindittb@twr.in।
धन्य है वो जो मन के दीन है, स्वर्ग के राज्य में जाएंगे। धन्य है वो जो मन के दीन है, स्वर्ग के राज्य में जाएंगे। धन्य है वो जो मन के दीन है, स्वर्ग के राज्य में जाएंगे। धन्य है वो जो शोक है करते, शांति आनंद पाएंगे। सुनो धन्य वचन, सुनो धन्य वचन, यीशु का धन्य वचन होगा धन्य जीवन। धन्य है वो जो मन के दीन है, स्वर्ग के राज में जाएंगे। धन्य है वो जो शोक है करते, शांति आनंद पाएंगे। सुनो धन्य वचन, सुनो धन्य वचन, यीशु का धन्य वचन होगा धन्य जीवन।